नवम अध्याय व्याकरण शिक्षण। भारत में व्याकरण की परंपरा। भारतवर्ष में व्याकरण शिक्षा की परंपरा की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ पर व्याकरण की शिक्षा को सदा से ही प्रमुख स्थान मिलता रहा है। वेदांग 6 माने गए हैं: शिक्षा, कल्प अर्थात कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त अर्थात भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। इन वेदांगों में व्याकरण को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रधानम च संगे गेश व्याकरणम। व्याकरण शब्द वि धन आ धन क्र धातु प्लस ल्युट प्रत्यय के योग से बना है। इसका आशय है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्द अनेनेति व्याकरणम अर्थात जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप शब्द सिद्धि हो। व्याकरण की शिक्षा के बिना बालक शुद्ध रूप से भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसके द्वारा भाषा को व्यवस्थित किया जाता है। व्याकरण को लक्षण शास्त्र नहीं माना जा सकता। वस्तुतः वह लक्ष्य शास्त्र है और इनका अध्ययन भाषा की शुद्धता के लिए किया जाता है। भाषा को व्यवस्थित करने के लिए उसका विश्लेषण आवश्यक होता है। यह विश्लेषण व्याकरण द्वारा ही संभव है। इसीलिए प्रसिद्ध आंग्ल मनीषी डॉक्टर स्वीट ने व्याकरण को भाषा का विश्लेषण कहा है। उनके मतानुसार व्याकरण द्वारा ही भाषा रचना का ज्ञान होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्याकरण की शिक्षा के बिना रचना एवं अनुवाद की शिक्षा अपूर्ण रहती है। वाक्य रचना का आधार व्याकरण ही है। शब्द रचना भी व्याकरण द्वारा ही संभव है। अतः व्याकरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ब्रह्मा को संस्कृत का आदि ज्ञाता माना जाता है। ब्रह्मा ने व्याकरण का ज्ञान आचार्य बृहस्पति को दिया, ऐसा ऋक् तंत्र में लिखा है। बृहस्पति से यह ज्ञान इंद्र के पास पहुंचा और इंद्र से भारद्वाज के पास। व्याकरण के रूप में बृहस्पति का उल्लेख महाभाष्य में भी है। बृहस्पति ने प्रतिपद पाठ द्वारा इंद्र को शब्दोपदेश दिया था। इंद्र ने व्याकरण की संपत्त और परिमार्जित करने के लिए पदों के प्रकृति प्रत्यय आदि का विभाग किया था। इंद्र के अनेक शिष्यों का उल्लेख है, जिसमें भारद्वाज, धन्वंतरी, कश्यप, वशिष्ठ, भृगु और अत्रि का नाम महत्वपूर्ण है। ऋक् तंत्र में भारद्वाज को ही चौथा व्याकरण बताया गया है। भगुर के पुत्र को भागुरी व्याकरण का प्रणेता माना जाता है। काशकृत्स्न ने 3 अध्यायों का एक व्याकरण लिखा था और इनके नाम का उल्लेख महाभाष्य में भी है। काशिका के अनुसार व्याद्रुपद और माध्यनंदिनी भी व्याकरण थे। चरक संहिता में शौनक का नाम भी आया है। गौतम का उल्लेख महाभाष्यकार ने किया है। महाभाष्यकार ने व्याडि की भी प्रशंसा की है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 10 व्याकरणों का उल्लेख किया है। आपशाली बड़े प्रमुख व्याकरण थे। अष्टाध्यायी में कश्यप का 2 बार एवं गार्ग्य का 3 बार उल्लेख मिलता है। गालव का नाम पाणिनि ने 4 बार लिया है। चक्रवर्मण कश्यप के पुत्र थे और व्याकरण में इनका योगदान है। भारद्वाज का व्याकरण के रूप में केवल 1 बार उल्लेख हुआ है। अष्टाध्यायी में शाकटायन का उल्लेख 3 बार, शाकल्य का 4 बार और सेनक का 1 बार हुआ है। स्फोटायन का उल्लेख स्फोट सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में हुआ है। पाणिनि के बाद भी व्याकरण की परंपरा चलती रही। परवर्ती व्याकरणों में कात्यायन और पतंजलि का नाम उल्लेखनीय है। कात्यायन वार्तिकार थे और पतंजलि महाभाष्यकार, बाद में भृतिहरि और नागेश भट्ट द्वारा इस स्फोटवाद पर गहन चिंतन मनन किया गया है। संस्कृत भाषा में व्याकरण का विशेष महत्व है। पाणिनि की अष्टाध्यायी उच्च कोटि का व्याकरण ग्रंथ है। पतंजलि का महाभाष्य, भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी इस दिशा में उल्लेखनीय ग्रंथ है। पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। यह बात ध्यान देने योग्य है, व्याकरण कोई काल्पनिक नियम नहीं बनाता, वह भाषा के आगे आगे नहीं चलता। व्याकरण शब्दों का शासन नहीं करता, वरन उसका अनुशासन करता है। भाषा का जो प्रवाह जनसाधारण द्वारा व्यवहृत होता है, व्याकरण उस प्रवाह को व्यवस्थित करता है। वह प्रचलित भाषा के नियमों को खोज निकालता है। ध्यान रहे, वह नियमों को खोजता है, नए नियम नहीं बनाता। इसीलिए व्याकरण को शब्दानुशासन कहा गया है। किंतु इसका तात्पर्य यही है कि व्याकरण की शिक्षा गौण है। आजकल कुछ इसी प्रकार की मनोवृत्ति दिखाई पड़ती है। लोग व्याकरण को झंझट समझते हैं। कुछ लोगों के अनुसार भाषा ज्ञान के लिए व्याकरण की शिक्षा आवश्यक नहीं, या मत किसी अन्य भाषा के लिए चाहे उपयोगी हों, किंतु संस्कृत भाषा के लिए बड़ा घातक है। संस्कृत भाषा में व्याकरण का स्थान निर्विवाद है। बिना व्याकरण के सही ज्ञान के संस्कृत भाषा का ज्ञान अपूर्ण रहेगा। अतः शुद्ध एवं परिष्कृत संस्कृत सीखने के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है। प्राचीन समय में व्याकरण की शिक्षा का बड़ा प्रचलन था। जो व्यक्ति व्याकरण का शुद्ध ज्ञान नहीं रखता था, उसे संस्कृत समाज में साधन नहीं मिलता था। कहा जाता है कि एक पंडित जी अपनी पुत्री और एक शिष्य को साथ साथ व्याकरण पढ़ाया करते थे। दोनों की आयु लगभग समान थी। शिष्य सुशील एवं कुलीन था, अतः पंडित जी अपनी पुत्री का विवाह उसी शिष्य से करना चाहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी पुत्री के समक्ष जब यह प्रस्ताव रखा, तब उसने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा, यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च यस्याहम च द्वितीयस्याद् द्वितीयस्याहमहम कथम। विहस्य तथा विहाय क्रियापद हैं और अहम सर्वनाम का रूप है। किंतु पंडित जी का शिष्य विहस्य का संज्ञा के षष्ठी विभक्ति का रूप, विहाय को संज्ञा के चतुर्थी का रूप और अहम को संज्ञा के द्वितीय विभक्ति का रूप बताया करता था। उसकी बात इस बात का मजाक उड़ाती हुई पंडित जी की कन्या ने कहा कि ऐसे मनुष्य की मैं द्वितीय पत्नी कैसे हो सकती हूँ। संस्कृत व्याकरण की विशेषता। जब वैदिक संस्कृत का अंत होने लगा था और लौकिक संस्कृत का उदय हो रहा था, उस समय संस्कृत भाषा के क्षेत्र में बड़ी अव्यवस्था फैली हुई थी। उस समय विद्वान लोग एक नवीन व्याकरण की आवश्यकता का अनुभव करने लगे। पाणिनि का प्रादुर्भाव ऐसे ही काल में हुआ था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी को रचना करके एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। इसमें भाषा की इतनी बारीकी से विश्लेषण किया गया है और सूक्ष्म से सूक्ष्म नियमों का प्रतिपादन इतनी मौलिकता से किया गया है कि भारत ही नहीं वरन संसार के विद्वानों को पाणिनि की प्रतिभा पर आश्चर्य होता है। अष्टाध्यायी व्याकरण का मुकुटायमान ग्रंथ है। यह ग्रंथ केवल व्याकरण के नियमों का संकलन मात्र ना होकर भाषा विज्ञान एवं व्याकरण पर सर्वोत्कृष्ट मौलिक रचना है। अष्टाध्यायी की रचना सूत्र प्रणाली से हुई है। पाणिनि द्वारा एक भी पद व्यर्थ नहीं प्रयुक्त होता। आज भी पंडित लोग सूत्र प्रणाली का बड़ा आदर करते हैं और आधी मात्रा को भी यदि वे बचा लेते हैं तो पुत्र जन्म कासा उत्सव मनाते हैं। गण व धातुएं।